मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 6 मार्च 2019 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों कल हम लोग भगवान शिव के बारे में बात कर रहे थे और मैं एक बात यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि मैं भगवान शिव के बारे में बात कर रहा हूं तो शिव को मैंने क्यों लिया है उसके दो कारण है, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पहला तो यह है कि मैं शिव के बारे में जानता हूं क्योंकि शुरू से मैं उनकी आराधना करता रहा हूं और जानना शब्द तो बहुत छोटा होगा, यूं कह लीजिए कि मैं उन्हें अपने अंदर कहीं न कहीं महसूस करता हूं। तो स्वाभाविक है कि जिसे आप महसूस करते हैं उसके बारे में आप कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं कोई दूसरे देवी देवताओं का विरोधी हूं, नॉट एट ऑल। हाँ, जब दूसरों के बारे में मैं बात करूंगा तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी बुद्धि की प्रबलता ज्यादा होगी, शायद हृदय पक्ष कमजोर पड़ जाए। और मैं यहां आपसे एक बात और भी कहना चाहूंगा कि चूंकि मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है तो स्वाभाविक है कि मेरे जो आराधना के देव हैं वो हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा से जुड़े हुए हैं। अदरवाइज मुझे यह मानने में कहीं कोई संकोच नहीं होता कि धर्म का जो मूल तत्व है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, वह एक ही है। अब ये बात अलग है कि फिर कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उनके किस तरीके से अर्थ बताने की कोशिश करते हैं, लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि नहीं यही धर्म है और उसके आधार पर फिर वो अपने स्वार्थों को सिद्ध करते हैं, वह बात अलग है। लेकिन अगर आप किसी भी धर्म के मूल शास्त्रों को उठा करके देखेंगे, मूल ग्रंथों को उठा करके देखेंगे, तो आप हर धर्म में मूल तत्व के रूप में शिव तत्व को ही प्राप्त करेंगे। और यहां मैं जो शिव तत्व की बात कर रहा हूं वह तत्व है कल्याण का तत्व, लोगों का कल्याण करना। और जब लोगों के कल्याण की बात होती है तो याद रखिए उसमें प्रकृति का कल्याण शामिल होता है। लोगों का अस्तित्व प्रकृति से भिन्न नहीं है, हम प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं, हमारा भी धीरे 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 विकास हुआ है प्रकृति के साथ। तो जिस दिन प्रकृति नष्ट हो जाएगी स्वाभाविक है कि हम भी नष्ट हो जाएंगे, हमें कोई बचा नहीं सकता। आप यूं मान करके चलिए कि प्रकृति का विध्वंस होना या प्रकृति में विकृति आना एक प्रकार से प्रकृति के साथ हमारी जो नाल जुड़ी हुई है उसका कट जाना है। और गर्भ में पल रहे शिशु की नाल अगर अपने मां के गर्भ से कट जाए तो उसकी क्या स्थिति हो सकती है, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। और दोस्तों शिव प्रकृति के साथ हमारे इस सामंजस्य को व्यक्त करने वाले मुझे लगता है कि सर्वोत्तम देव हैं प्रकृति। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि शिव की जो उत्पत्ति है वो सभी आदिम, जितने भी आदिम संस्कृतियां हैं, जितने भी आदिम धर्म हैं, भले उन्होंने शिव की रचना न की हो उस रूप में जिस रूप में वो हमारे यहां हैं, लेकिन वैचारिक रूप में बिल्कुल आपको वही सब कुछ दिखाई देता है, प्रकृति के देव। दरअसल जो शिव हैं वो प्रकृति के ही देव हैं। और जो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो खोद उत्खनन के बाद जो हमें कुछ चित्र मिले हैं, जो हमें कुछ मुहरें मिली हैं, उनमें जिस एक चित्र का उल्लेख है या जो चित्र हमें एक दिखाई देता है वह शिव का ही चित्र है। उसमें शिव के बहुत सारे तत्व दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्राचीन संस्कृति की चेतना ने जिस ईश्वर की परिकल्पना स्वरूप के रूप में की कि भाई उसका एक रूप होना चाहिए या उसका एक रूप हो सकता है, तो वह शिव के रूप में उसके दिमाग में आया। आप कभी भगवान शिव, चलिए एक तो शिवलिंग के रूप में है, इसका मतलब यह है कि भगवान मूलतः निर्गुण है। आप देखिए कि भगवान शिव को दो रूपों में आप देखेंगे, एक तो उन्हें चित्र के रूप में दिखाया गया है, मूर्ति के रूप में दिखाया गया है, चित्र और मूर्तियां हम सब जानते हैं। लेकिन जो आराधना होती है आप देखिए मंदिर में, तो आपको एक अद्भुत चीज दिखाई देगी कि वहां चित्र की आराधना नहीं होती, वहां मूर्ति की आराधना नहीं होती, ज्यादातर स्थानों पर आपको शिवलिंग दिखाई देंगे। एक साथ दो रूपों में है, यानी कि वो सगुण भी है, उनके हाथ पैर हैं, सब कुछ है, और लेकिन उनका एक निर्गुण रूप भी है, और निर्गुण रूप के रूप में शिवलिंग की हम आराधना करते हैं। मूलतः वह ऊर्जा की आराधना है, वर्शिप ऑफ एनर्जी, और दुनिया ऊर्जा की आराधना करती है। हम खुद ऊर्जा के ही एक रूप है। अगर आप आइंस्टीन के सिद्धांत को याद करें तो आइंस्टीन ने साफ साफ कहा कि यह दुनिया ऊर्जा से बनी हुई, हमें हम जितने भी पदार्थ देख रहे हैं, भौतिक पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा का एक संगठित रूप है। इन्हें तोड़ दीजिए, या यूं कह लीजिए कि इन्हीं वस्तुओं से ऊर्जा जनरेट की जा सकती है, ऊर्जा पैदा की जा सकती है, यानी कि ये जो जगत है यह ऊर्जामय है। और अगर ये जगत ऊर्जामय है तो सीधी सी बात है कि शिवलिंग के रूप में हम उसी ऊर्जामय जगत की आराधना कर रहे हैं, इस प्रकृति की आराधना कर रहे हैं, बस प्रतीक के रूप में हमने उसे इस रूप में ढाल लिया है। फिर आप अब शिव के सगुण रूप में चले जाइए, आप देखेंगे कि उनके शरीर पर जो कुछ भी हमारे पूर्वजों ने रखा है वो सब के सब प्रकृति से लिए गए हैं, और प्रकृति से भी ज्यों के त्यों लिए गए हैं, यानी कि प्रकृति से लेकर के उसका विनिर्माण किया गया, मैन्युफैक्चरिंग की गई है, नो, प्रकृति से उठाया गया, लिया गया और भगवान शिव को धारण करा दिया गया। जैसे मैंने ये बात इसलिए कही कि आप भगवान विष्णु को देखिए, वस्त्र पहने हुए हैं, सिले हुए वस्त्र भी हैं, बकायदे सजे हुए वस्त्र हैं, लेकिन जब भगवान शिव को वस्त्र पहनाने की बात आई तो क्या किया गया, प्रकृति से चुना गया। प्रकृति से क्या चुना गया, बाघांबर, बाघ का अंबर, यानी कि खाल चुन ली गई, ठीक है, और उसे ज्यों का त्यों लपेट दिया गया। ये नहीं कि उसका अब कुछ बनाया जा रहा है, उसमें कुछ सिलाई कढ़ाई की जा रही है, नॉट एट ऑल, वो तो प्रकृति में वैसे भी पड़ा हुआ मिल जाएगा। अगर कहीं बाघ की मृत्यु हो गई है, कुछ समय तक वो पड़ा हुआ है, तो उसकी खाल आपको मिल जाएगी, उसका चमड़ा मिल जाएगा, उठाइए और पहन लीजिए। और हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो आदि मनुष्य रहा होगा, वो जब उसके दिमाग में आई कि नहीं, वस्त्र जैसा कुछ पहनना चाहिए, अपने शरीर को ढकना चाहिए, तो उसे जहां भी खाल मिली होगी उसने उसे उठा करके अपना शरीर ढक लिया होगा। आप देख रहे हैं कि भगवान शिव किसका प्रतीक है, किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रकृति के तत्वों का। फिर आपने सिर पर क्या रखा, माला के रूप में उनको क्या पहनाया, नहीं, आपने सर्प को डाल दिया उनके गले में, सर्प, और ज्यों का त्यों डाल दिया है, सर्प उठाया, माला जैसी है, सर्प भी लहराता है, कोमल है, गोल हो जाता है। अगर गले में कोई गोल चीज डाल दी जाए तो वो खूबसूरत लगेगी। आप देखिए कि गले में जितनी भी चीजें डाली जाती हैं आभूषण के रूप में, उनका आकार आपको गोल मिलेगा, वो तिकोना चौकोना अष्टकोना नहीं मिलेगा, वो गोल मिलेगा, क्योंकि गोल ही वस्तु गले पर, देखिए गले गोल, गले गोल सुंदर लग सकती है, वो सामंजस्य है, वो उसके गले के स्वरूप के सामंजस्य में गोल वस्तु ही ठीक लगेगी। तो अब उनको गोल वस्तु ढूंढना था, सांप अच्छा रहेगा, सांप घूम जाता है और वो अपना स्वरूप भी बदलता रहता है, कभी छोटा हो जाएगा, कभी फैल के बड़ा हो जाएगा, बड़ा खूबसूरत लगेगा। आपने फिर से एक प्रकृति के जीव को डाल दिया खाल के रूप में, मृत जीव के छाल को डाला कि वो अनुपयोगी नहीं है, वो भी उपयोगी है, और फिर एक मृत को जीव को डाल दिया और वो है सर्प। अब सर्प तो बहुत विषैला होता है, अब ऐसा कैसे किया जाए कि भाई विष अगर चारों तरफ फैल रहा है तो उसका असर ना हो, जीवन पर तो विष का असर होगा, तो फिर क्या किया जाए, नहीं, फिर ऐसा किया जाए कि विष के असर को कम करने का एक जो मेडिकल तरीका हो सकता है, वैज्ञानिक तरीका हो सकता है, वो ये हो सकता है कि भगवान शिव को कोशिश की जाए कि वो लगातार ठंडे बने रहें, ठंडे बने रहें, क्योंकि विष तो जहरीला होता है, तो ठंडेपन का इंतजाम किया जाए। तो भगवान शिव के सिर पर दो चीजें रखी गई। आया ध्यान दीजिए कि उनके सिर पर सूर्य नहीं रखा गया, सूर्य रखा जा सकता था, वो तो ऊर्जा के प्रतीक हैं, और आप देखिए कि जब तांडव नृत्य करते हैं तो पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है, वो इतने गुस्सैल भी हैं, तो सूर्य ज्यादा सूट करता, सूर्य ज्यादा ऊष्मा देता है, सूर्य ज्यादा प्रकाश भी देता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सूर्य नहीं रखा जाए, अभी जो भगवान शिव की जो जरूरत है उस चंद्रमा की जरूरत है, और चंद्रमा थोड़ा सा ज्यादा प्यारा भी लगता है, चंद्रमा से लोग परेशान भी नहीं होते हैं, उसकी जो चांदनी रात है वो बड़ी सुहानी होती है, ठंडक भी पहुंचाएगी, तो चंद्रमा रख दिया गया। और इसके बाद फिर गंगा की धारा नहीं, ये जो विष अगर आता रहेगा तो पानी उसका प्रक्षालन करते रहे, पानी से वो लगातार धुलता रहे, तो आपने चंद्रमा और पानी रख दिया, तो आपने जल तत्व रख दिया। आप देख रहे हैं जीव भी है, प्रकृति भी है, अंतरिक्ष भी है। तो जो आपने शिव की परिकल्पना की है, आप देखिए किस रूप में की है, यानी कि प्रकृति के साकार देवता वो हैं शिव। और फिर आप दूसरी चीज पाते हैं विरोधों में सामंजस्य, कि वो बिल्कुल विरोधी चीजें लेते हैं और उन विरोधी चीजों को लेकर के उन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करते हैं। सर्प का विष, तो चंद्रमा की शीतलता। आप देखिए तांडव भयानक और नृत्य, मतलब नृत्य है, नृत्य का मतलब है सुहाना, जो मनोहारी है, जो अच्छा लग रहा है, जिसमें रिदम है। लेकिन ये रिदम भी कैसा है, तांडव। तो आप देखिए कि किस तरीके से डमरू ध्वनि, आप देख रहे हैं संगीत, लेकिन उसके साथ तांडव नृत्य। तो आप पाएंगे कि शिव के अंदर जितने भी तत्व हमने शामिल किए हैं, दो परस्पर विरोधी और परस्पर विरोधी के बीच में सामंजस्य, यानी कि जो परस्पर विरोधी तत्वों के बीच में सामंजस्य बैठा लेता है, वही सही मायने में अपने अंदर शिव तत्वों को स्थान देता है। तो दोस्तों, अब शिव के बारे में बस इतना ही, मुझे नहीं मालूम कि मेरी यह व्याख्या आप लोगों को कैसी लगी होगी, लेकिन भारतीय दर्शन की एक बहुत बड़ी बात है जो बहुत उसकी महानता है, और वो ये है कि वो धर्म की अपने अपने ढंग से व्याख्या करने की छूट देता है। केवल व्याख्या करने की ही छूट नहीं देता है, बल्कि अपने अपने स्वरूप निर्धारित कर लेने की भी छूट देता है। और मित्रों, ये बहुत बहुत और बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ ही मैं आज के अपने इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, नमस्कार।